नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज ऐतिहासिक क्षण, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। आतंकवाद संबंधी चिंताओं को शामिल न करने पर भारत की कड़ी आपत्ति के बाद शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग ने अनुपालन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले 345 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई ने साइबर अपराध पर कड़ी कार्रवाई में डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 42 स्थानों पर छापे मारे। घरेलू शेयर बाजार 1.2% की उछाल के साथ 2025 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा और भारत ने कुआलालंपुर में एशियाई मिक्स स्क्वाश में पुरुषों, महिलाओं और मिक्स स्पर्धाओं में 3 पदकों के साथ शानदार जीत हासिल की। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया। XM-4 मिशन के अंतर्गत स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान को दोपहर बाद 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक यानी जोड़ा गया। इस मिशन के चालक दल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अमरीका, पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल हैं। 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है। लखनऊ में जन्मे शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस ऐतिहासिक मिशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में 14 दिन तक वैज्ञानिक शोध करेंगे। XM-4 मिशन न केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। शुभांशु शुक्ला भोजन और अंतरिक्ष पोषण से संबंधित उन्नत प्रयोग करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और XM-4 मिशन टीम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग के लिए बधाई दी है।
पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई उसके कारण ये संभव हो पाया।
शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि के साथ ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एक नजर भारत की अब तक की अंतरिक्ष यात्रा पर।
स्वतंत्रता के बाद से भारत की अंतरिक्ष यात्रा उल्लेखनीय कहानी रही है। 1975 में देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने उपग्रह प्रौद्योगिकी में भारत के भविष्य की नींव रखी। 5 साल बाद 1980 में भारत स्वदेशी SLV-3 रॉकेट का उपयोग करके रोहिणी 1B का प्रक्षेपण कर स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमताओं वाले कुछ देशों में शामिल हो गया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अगला मील का पत्थर 1984 में आया जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए।
बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहाज से अच्छा, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मजे में हैं।
भारत ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में रिमोट सेंसिंग, संचार और मौसम उपग्रहों में प्रगति के साथ बड़ी गति पकड़ी। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया जिसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की। 2013 की मिशन मंगलयान ने भारत को अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को 2015 में लॉन्च किया गया। अपनी चंद्र महत्वाकांक्षाओं को जारी रखते हुए इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। हालांकि विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन ऑर्बिटर सक्रिय रहा और महत्वपूर्ण जानकारी भेजना जारी रखा। 2023 में चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया। भारत ने आदित्य L-1 सौर मिशन भी लॉन्च किया और इस साल गगनयान मानव अंतरिक्ष यान की तैयारी कर रहा है। इसकी अंतरिक्ष उपलब्धियों में नवीनतम स्पेसएक्स मिशन है जिसमें स्वदेशी डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया। व्यावसायिक रूप से भारत ने 2017 में एक मिशन में 393 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया और 104 उपग्रहों को तैनात करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक पंखदार बॉडी ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल भी विकसित रहा है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने चीन के शिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस दस्तावेज में सीमा पार आतंकी गतिविधियों का कोई उल्लेख नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र का समर्थन करने से इनकार करने के कारण सम्मेलन संयुक्त विज्ञप्ति के बिना ही समाप्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, कट्टरता और चरमपंथ के विरुद्ध एकीकृत वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।
India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ सदस्यों देशों के कुछ मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण साझा दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारत चाहता है कि दस्तावेज में आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को दर्शाया जाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया।
India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. But we had participation of our Raksha Mantri. We issued a press release. The press release is very instructive in how we look at threat of terrorism.
ऑपरेशन सिंधु पर श्री जायसवाल ने कहा कि ईरान से 3,426 भारतीयों और इसराइल से अब तक 818 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि भारत अपना हवाई क्षेत्र खोलने के लिए ईरानी सरकार को धन्यवाद देना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहचरी है और इसे उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भाषाओं को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में काम करना चाहिए।
हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आपातकाल देश के इतिहास का एक काला दौर था और इसके कारण लाखों लोगों को कष्ट सहना पड़ा। नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर बर्बरता और अत्याचार हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई उन लोगों के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण सफल हुई जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। हमारे संवाददाता ने आपातकाल के दौरान मीसा के अंतर्गत जेल में बंद पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से बात की।
इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसका वो एक प्रमाण है। सारा देश जो एक प्रकार से जेल बन गया, तो एक तो ये बात है और इसलिए ये बात बड़ी आज भी स्मरण करने लायक है कि जो परिस्थितियां उस वक्त संविधान का की व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ करके और जो बनाई गई और जो किया गया लगाना पसंद किया और 25 जून की रात्रि में उन्होंने देश में आपातकाल लगाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया गया, एक देश के लोकतंत्र का वो काला अध्याय है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ग्वालियर बेंगलुरु एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रेलगाड़ी के शुरू होने से ग्वालियर, गुना और भोपाल के लोगों को काफी लाभ होगा।
ग्वालियर से बेंगलुरु की ये जो गाड़ी रवाना होगी इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे ग्वालियर को, गुना को, भोपाल को। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और साथ ही साथ बजट भी दिया है। जहां पर आज से 10 साल पहले 632 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, आज 14,745 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर पूरी छूट जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवश्यक शर्तें पूरी न करने के कारण अपनी सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के लिए शुरू की गई है जिन्होंने 2019 से अब तक लोकसभा और राज्य या केंद्र शासित विधानसभा के किसी चुनाव में भाग नहीं लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे खच्चर बैंक खातों के संबंध में 5 राज्यों में 42 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी शुरू की है। खच्चर खाता वह बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। यह अभियान ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चलाया गया। सरकार ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित परीक्षाओं और भर्ती की प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को मंजूरी दे दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.2% की बढ़त से आज 1000 अंकों का उछाल लेकर 83,756 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.2% की मजबूती से 304 अंक बढ़कर 25,549 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे की मजबूती से 85.71 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $67.96 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए।
भारत ने सिंगापुर के क्वालालंपुर में दूसरी एशियाई स्क्वाश मिक्स चैंपियनशिप में आज पुरुष, महिला और मिक्स स्पर्धा के सभी तीनों खिताब जीतकर क्लीन स्वीप किया। पुरुष डबल्स में अभय सिंह और वेलवन सेंदल कुमार की जोड़ी ने पाकिस्तानी जोड़ी को हराया। महिला डबल्स में जोशना चिनप्पा और अनहत सिंह की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को फाइनल में हराया। वहीं मिक्स डबल्स के फाइनल में अभय और अनहत की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक क्षण, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। आतंकवाद संबंधी चिंताओं को शामिल न करने पर भारत की कड़ी आपत्ति के बाद शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग ने अनुपालन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले 345 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। CBI ने साइबर अपराध पर कड़ी कार्रवाई में डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 42 स्थानों पर छापे मारे। घरेलू शेयर बाजार 1.2% की उछाल के साथ 2025 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और भारत ने क्वालालंपुर में एशियाई मिक्स स्क्वाश में पुरुषों, महिलाओं और मिक्स स्पर्धाओं में 3 पदकों के साथ शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।